الحمد لله نعم على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فإن الله لمع المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم بہشتی زیور کی کتاب السلوک والاحسان سے پڑھ رہے ہیں، اخلاق حمیدہ اور ان کا اصول اور ان کے حصول کے طریقے، یعنی کیسے ان کو حاصل کیا جائے. تو اس میں ہم تقریباً سارے اخلاق حمیدہ تو پڑھ چکے ہیں، اور پچھلی کلاس میں پچھلے ہفتے ہم نے جو ٹاپک سٹارٹ کیا تھا اس میں پڑھنا، وہ تھا کہ اپنے نفس اور دوسروں کے شر سے بچنے کا طریقہ، اپنے نفس کے شر سے اور دوسروں کے شر سے بچنے کا طریقہ. تو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ جو کہ حکیم الامت ہیں، امت کے حکیم، حکیم کس کو کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کو، حکمت والے کو. اور یہاں پر جو ہمارے مشائخ نے حضرت کو حکیم الامت کا لقب دیا، تو وہ طبیب کے معنی میں بھی، بلکہ طبیب کے معنی میں ہی زیادہ لیا جاتا ہے، کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امت کے جو امراض تھے، جو برائیاں تھیں، جو خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں امت کے اندر، تو ان کی تشخیص کری اور ان کی جو ہے وہ وجوہات بیان کریں، اور پھر ان سے نکلنے کا، ان کے علاج کا طریقہ بتایا. یہی تین کام ہوتے ہیں جو کہ ڈاکٹر صاحب نے، طبیب صاحب نے، حکیم صاحب نے کرنے ہوتے ہیں، کہ پہلے جو ہے وہ بیماری کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ ہاں بھائی کیا بیماری ہے، کون سی بیماری ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اس بیماری کی وجوہات بیان کرنا، یعنی بتانا کہ ڈائگنوسس کرنا کہ یہ کیوں ہے، یہ بیماری اس کی کازز کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس بیماری سے نکلنے کا طریقہ بتانا، یعنی علاج بتانا، ٹھیک ہے، علاج بتانا یہ طبیب کا کام ہوتا ہے، اور پھر اس علاج کو یعنی اختیار کرنا اور اس علاج کے طریقے کے اوپر چلنا یہ مریض کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ڈاکٹر جو ہے وہ پکڑ پکڑ کر کے مریض کے منہ کے اندر دوائی نہیں ٹھوس سکتا. زیادہ سے زیادہ اگر کوئی وہ اس قسم کا کام کرتا بھی ہے، وہ جراحی کا کام کرتا ہے، یعنی جس کو کہ آپریشن کرنا کہتے ہیں، سرجری کرنا کہتے ہیں، لیکن سرجری جو ہے وہ ہر مریض کی نہیں بھی کی جا سکتی ہے، اور سرجری ہر صورت میں بھی نہیں کی جا سکتی ہے. اس کے لیے بھی خاص ایسے مواقع ہوتے ہیں، ایسے مریض حالت ہوتی ہے کہ جس کے اندر سرجری پاسبل ہوتی ہے. آپ نے سنا ہوگا نا کہ جب مریض بہت زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، یا مریض کو جو ہے وہ بہت ساری دوسرے عارضے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بھئی ان کی سرجری نہیں کی جا سکتی، ان کی سرجری جو ہے نا یہ بہت رسکی ہے، کہیں یہ جو ہے نا وہ ریکور نہ کر سکیں اور موت کے منہ میں چلے جائیں، تو اس وجہ سے ان کی سرجری نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے. تو سرجری ہر صورت میں نہیں کی جا سکتی. کیا مطلب کہنے کا؟ کہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ علاج کو فورسفلی مریض کے اوپر ہر صورت میں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. عام صورت علاج کی کیا ہے، عام طریقہ علاج کا کیا ہے، کہ مریض کو دوا بتا دی جائے، مریض کو پریکاشنز بتا دی جائیں. اب جو ہے نا وہ مریض نے خود ہی پریکاشنز کرنی ہے اور خود ہی جو ہے وہ دوا کو استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہی معاملہ جو ہے وہ روحانی بیماریوں کے علاج میں بھی چلتا ہے. یہ ہمارے مشائخ جو کہ روحانی اطباء ہوتے ہیں، وہ ہمیں تفصیلات بتا دیتے ہیں، اب ان کے اوپر عمل کرنا نہ کرنا یہ ہمارا اپنا فعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو اپنے نفس اور دوسروں کے شر سے بچنے کا طریقہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا تھا، کہ اوپر جتنی بھی اچھی اور بری باتوں اور ثواب و عذاب کی چیزوں کا بیان آیا ہے، ان میں سے دو چیزیں خرابی پیدا کرتی ہیں. ان میں سے دو چیزیں کا مطلب یہ کہ یہ جو اخلاق ذمیمہ پیدا ہوتے ہیں نا، تو وہ دو چیزوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور जो इनका इलाज हमने बताया है कि भाई अखलाक हमीदा अपने अंदर पैदा करना, तो इस प्रोसेस के अंदर भी खराबी जो है ना वो दो चीजों की वजह से पैदा होती है कि सब कुछ जान लेने के बावजूद जो है वो इंसान अखलाक हमीदा अपने अंदर पैदा नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? दो वजूहत होती है उसकी, ठीक है। एक वजह तो अपना नफ्स होता है कि वो हर वक्त ना तरह तरह की बातें समझाता रहता है, नेक कामों में बहाने निकालता है और बुरे कामों में अपनी जरूरतें याद दिलाता है कि नेक कामों में लेकिन नहीं अभी नहीं, अभी क्या जरूरत है करने की, इसके बगैर भी काम चल जाएगा, और जो है वो इतना भी यानी एक्सट्रीमिस्ट होने की जरूरत नहीं है, इतना भी जो है ना वो सर पे चढ़ा लेने की इन चीजों की जरूरत नहीं है, इस किस्म के बहाने बनाता है, ठीक है। और दूसरा क्या कि जो बुरे काम होते हैं तो उनके लिए हाँ भाई ये तो जरूरत है, ये तो मजबूरी है, ये तो करना पड़ेगा, ये तो उसके बगैर तो गुजारा नहीं है, ये तो सभी करते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह के अल्फाज और जुमले याद दिलाता रहता है। तो अजाब से डराओ, अगर उसको कोई मुसलह कोई उसका खैर ख्वाह इंसान जो है वो अजाब से अल्लाह के डराता है, तो वो जो नफ्स है ना वो अल्लाह ताला का गफूर और रहीम होना याद दिलाता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला तो माफ कर देने वाले हैं, वो मुझे भी माफ कर देंगे, और ऊपर से शैतान उसको सहारा देता है, ठीक है। यानी नफ्स को जो जो सहारा देता है वो शैतान सहारा देता है, यानी उसकी पीठ ठोकता है, उसको उसको सपोर्ट करता है। ये जो शेख होता है ना शेख, ठीक है, शेख यानी मुसलिह, इस्लाह करने वाला, सीधा रास्ता दिखाने वाला है ना, ये जो शेख होता है इसके मद्दे मुकाबिल कौन होता है, यानी इसकी जो अपोजिंग फोर्स होती है शेख को अपोज करने वाली, ये फोर्स कौन होती है? ये शैतान होता है, ठीक है ना, शेख बमुकाबला शैतान। और नफ्स के मुकाबले में कौन होता है? नफ्स के मुकाबले में जो है ना वो अल्लाह रब्बुल इज्जत, ठीक है। कि नफ्स किसका मुकाबला करता है? नफ्स अल्लाह का मुकाबला करता है, ठीक है, यानी खुद जो है ना वो खुदा बनने की कोशिश करता है, वो खुद खुदा बनने की कोशिश करता है, अना रब्बुकुमुल आला, वो कहता है अना रब्बुकुमुल आला, ठीक है। तो नफ्स के बुरे कामों के अंदर उसको कौन सपोर्ट करता है, उसको कौन यानी मवाद प्रोवाइड करता है, उसको कौन आइडियाज प्रोवाइड करता है? शैतान। और दूसरी तरफ जो नेकी की फोर्सेस कौन सी होती हैं? नेकी की फोर्सेस जो है ना वो अल्लाह रब्बुल इज्जत, ठीक है, जो कि इंसान के दिल के अंदर जो है वो अच्छी बातों का इल्हाम डालते हैं, ठीक है, अच्छी सोचें उसके दिल के अंदर भेजते हैं, ठीक है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत भी जो है वो फरिश्ते के जरिए से भेजते हैं, ठीक है ना। एक फरिश्ता जो है वो हर इंसान के साथ लगा हुआ होता है, हर इंसान के वजूद के साथ एक फरिश्ता मुस्तकिलन मौजूद रहता है, जो कि अच्छी चीजों के आइडिया उसके अंदर अल्लाह की तरफ से डालता रहता है, ठीक है। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह की मर्जी से वो फरिश्ता ये अच्छे आइडियाज जो है वो उसके अंदर डालता है। अब इसको सपोर्ट कौन करता है दुनिया के अंदर? अच्छे आइडियाज को सपोर्ट कौन करता है? वो शेख करता है, ठीक है, जो कि इंसान का अपना मुसले होता है, अपना जो है वो रहनुमा होता है, अपना रहबर होता है, अपना मुरब्बी होता है, उसको शेख कहते हैं, तो ये उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। दूसरी तरफ जो शैतान होता है उसको कौन सपोर्ट, सॉरी जो जो नफ्स होता है उसको कौन सपोर्ट करता है? शैतान। इस तरफ शेख, ठीक है। तो ये जो फरमाया ना कि ऊपर से शैतान उसको सहारा देता है, तो बिल्कुल इसी तरीके से नेकी के काम के अंदर शेख जो है वो इंसान को सहारा देता है और बुरे काम के अंदर शैतान उसको सहारा देता है। दूसरे फसाद डालने वाले वो आदमी हैं जो इससे किसी दूसरे यानी दूसरे फसाद डालने वाले वो आदमी हैं जो इससे किसी तरह का ताल्लुक रखते हैं, या तो अजीज व अकारिब हैं, या जान पहचान वाले हैं, या बरादरी कुंबे वाले हैं, ठीक है। तो ये माहौल के जो अफराद होते हैं ये फसाद पैदा करने का सबब बनते हैं। कुछ गुनाह तो इसलिए होते हैं कि उनके पास बैठने से यानी ये जो बरादरी वाले हैं, अजीज व अकारिब हैं, जान पहचान वाले हैं, उनके पास बैठने से उनकी बुरी बातों का असर इसके अंदर आ जाता है, और बाज गुना उनकी खातिरदारी की वजह से होते हैं। ठीक है कि भाई वो क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे, और वो जो है ना, वो जो है वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, या जो है वो मुझसे नाराज हो जाएंगे, इन सब बातों की वजह से। और बाज इसलिए होते हैं कि उनकी निगाह में हल्कापन ना हो, यानी मजाक उड़ाएंगे मेरा। ठीक है, तो इस वजह से फिर ये गुनाहों में मुबतला होता है। और बाज गुनाह इसलिए हो जाते हैं कि लोग इसके साथ बुराई करते हैं, कुछ वक्त इस बुराई के रंज में, कुछ वक्त उनकी गीबत में, और कुछ वक्त उनसे बदला लेने की फिक्र में खर्च हो जाता है। लोग इसके साथ बुराई करते हैं का मतलब ये कि लोग इसके ऊपर जुल्म करते हैं, इसको तकलीफ देते हैं। ठीक है, तो जब कोई इसको तकलीफ देता है, जुबानी तकलीफ दे या जिस्मानी तकलीफ दे, तो फिर उस इंसान को गम होता है। ठीक है, उसको दुख होता है, उसको एक शॉक मिलता है, तो वो तो कुछ देर तो वो शॉक के अंदर जो है वो जाया कर देता है। फिर उसके बाद जो है ना, वो गीबत शुरू करता है, लोगों से जो है ना इनकी बुराई करता है जिन्होंने इसको तकलीफ पहुंचाई थी, तो वो बहुत सारा वक्त इसका गीबत में जाया हो जाता है, और फिर उसके बाद बाकी वक्त जो होता है वो बदला लेने की फिक्र में खर्च हो जाता है, और फिर इससे तरह तरह के गुनाह पैदा हो जाते हैं। क्योंकि जब बदला लेने की फिक्र कर रहा होता है ना, तो फिर शैतान इसके दिल में आइडियाज डालता है कि कैसे बदला करना है, कैसे बदला लेना है। ठीक है, गर्ज सारी खराबी इस नफ्स की ताबेदारी की वजह से है, इसलिए इसकी खराबी से बचने के लिए दो बातें जरूरी हैं। एक तो अपने नफ्स को दबाना, और उसको कभी बहला फुसला कर, कभी डांट डपट कर दीन की राह पर लगाना। दूसरे, लोगों से ज्यादा लगाव ना रखना, और इस बात की परवाह ना करना कि वो अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे। इसलिए इन दोनों जरूरी बातों को अलग अलग लिखा जाता है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने जो आइडेंटिफिकेशन कर दी ना कि भाई ये बुराइयां हैं, फिर उसके बाद बता दिया कि इन बुराइयों के पैदा होने की वजह क्या है, नफ्स और दूसरे इंसान। ठीक है, फिर उसके बाद बता रहे हैं कि अब इनसे निकलने का क्या तरीका है, तो अलग अलग करके कि नफ्स के साथ क्या मामला होना चाहिए और बुरे और दूसरे इंसानों के साथ क्या मामला होना चाहिए। ठीक है, तो पहले बताते हैं नफ्स के साथ कैसे मामला करना चाहिए इंसान को। फरमाते हैं कि पाबंदी के साथ थोड़ा सा वक्त सुबह को और थोड़ा सा वक्त शाम को या सोते वक्त मुकर्रर कर लो, यानी सोने से पहले का कुछ वक्त जो है ना वो अपने लिए मुकर्रर कर लो। उस वक्त अकेले बैठकर जहां तक हो सके दिल को सारे ख्यालों से खाली करके इससे यूं बातें किया करो, यूं बातें किया करो, अपने दिल से बातें किया करो अपने आप से, और नफ्स से यूं कहा करो कि ए नफ्स, खूब समझ ले कि तेरी मिसाल दुनिया में एक ताजर की सी है। ठीक है, कि तुम जो हो ना, यानी उसको समझाओ गोया कि वो एक बच्चा है, और वाकई नफ्स की मिसाल जो है ना वो एक अनपढ़ बच्चे की तरह से है। ठीक है, तो वो उसको ना तुम बाकायदा लेक्चर दो इस टाइम में, सुबह का कोई टाइम मुकर्रर कर लो, शाम का कोई टाइम मुकर्रर कर लो, या सोने से पहले का कोई टाइम मुकर्रर कर लो, जिसमें कि नफ्स को, जिस तरह तबलीग जमात वाले नहीं वो तालीम किया करते हैं, तो अपने नफ्स को तालीम करो। ठीक है, कि भाई तुम तो एक ताजर की तरह से हो, एक ट्रेडर की तरह, पूंजी तेरी उम्र है, यानी तुम्हारे पास जो कैपिटल है ना वो तुम्हारा वक्त है, तुम्हारी उम्र है, और नफा इसका ये है कि हमेशा हमेशा की भलाई यानी आखिरत की निजात निजात हासिल करो। यानी तुम्हारी ट्रेड के अंदर, तुम्हारी तिजारत के अंदर जो तुमने कैपिटल को इन्वेस्ट करना है ना, तो इसके अंदर जो नफा मिलता है वो नफा क्या है? क्या वो नफा ये है कि तुम्हें दुनिया में अच्छा सा घर मिल जाए, तुम्हें दुनिया में अच्छा सा जो है वो गाड़ी मिल जाए, अच्छे कपड़े मिल जाए, लोग तुम्हारी वाह वाह करना शुरू हो जाए, ये तुम्हारा फायदा है, तुम्हारी तिजारत का फायदा ये है? नहीं, तुम्हारी तिजारत का फायदा जो है ना वो ये है कि आखिरत की हमेशा हमेशा की भलाई हासिल कर लो, ये तुम्हारा प्रॉफिट है। यानी प्रॉफिट को डिफाइन करना पड़ता है ना। ठीक है, कि भाई मेरा प्रॉफिट क्या है? ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर आप जो है वो कोई दुकान लगाएं, सही है, तो अब दुकान में जो है ना वो आपने अपने प्रोडक्ट्स रखे, कोई आपने फॉर एग्जांपल डेकोरेशन की चीजें बेचनी है, कोई जो है वो आपने कपड़े बेचने हैं। ठीक है, तो अब जो है ना वो आपकी दुकान के ऊपर कस्टमर्स आते हैं। ठीक है, कस्टमर्स आ करके आपके कपड़ों की तारीफें करें, आपके जो डेकोरेशन आइटम्स हैं उनकी तारीफें करें, और फिर वो वहां से चले जाए, तो खरीदे कुछ नहीं, तो क्या ये आपका प्रॉफिट है, क्या ये आपका नफा है कि उन्होंने आकर के खूब सारी तारीफें करी और उसके बाद मुंह उठाए चल दिए, कुछ नहीं खरीदा। इसी तरह से कस्टमर्स आए चले जा रहे हैं, तारीफें करे चले जा रहे हैं और चले चले जा रहे हैं, खरीद कुछ भी नहीं रहा, कोई भी कुछ नहीं खरीद रहा, तो क्या आप इसको अपना प्रॉफिट कहेंगे? नहीं, इसको तो प्रॉफिट नहीं कहेंगे ना। हाँ भाई ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपका दिल खुश हो गया, लेकिन हाथ तो कुछ भी नहीं आया ना। हाथ तो उस वक्त आएगा कि जब वो आपको पैसे दे करके आपके दुकान में से कुछ चीज लेकर के जाएंगे, तब आपको प्रॉफिट मिलेगा। और ये प्रॉफिट जो है ना, फिर इससे आपको फायदा होगा, आप अपने घर में इस पैसे को लेके जाएंगी, आप जो है वो इससे फिर अपने कोई फायदे की चीजें खरीदेंगी, आपकी जरूरतें पूरी होंगी, राइट? खाली जो झूठे मुंह तारीफ कर देना तो आपका प्रॉफिट नहीं है, वो तो एक लम्हे की चीज है, खत्म हो गई फौरन से। यही मामला दुनिया की जिंदगी का भी है, ठीक है, कि भाई दुनिया के अंदर जो हम छोटे छोटे से थोड़ी थोड़ी सी देर के आराम हासिल कर रहे हैं, तो इससे थोड़ी देर के लिए तो नफ्स खुश हो जाता है, लेकिन ये लास्टिंग प्लेजर तो नहीं है ना, ये तो थोड़ी देर में खत्म हो गया। तो प्रॉफिट तो ये है कि जो कि आपके पास लास्ट करे, आपके पास रहे, जिससे कि आप जो है वो अपनी हमेशा हमेशा की जिंदगी के अंदर फायदा हासिल कर सकें, ठीक है ना? तो भाई आप यानी अगर किसी छोटे बच्चे को उठा करके दुकान पे बिठा देंगी, ठीक है ना, जिसको के तारीफें जो है वो खुश कर देती हैं, तो आपको उस बच्चे को समझाना पड़ेगा ना कि देखो कस्टमर्स आकर के अगर तुम्हारे प्रोडक्ट की तारीफ करके चले जाए ना, तो ये मत समझना कि तुम्हें प्रॉफिट हासिल हो गया है, तुम्हें नफा मिल गया है, इसमें खुश मत हो, इसमें खुश होकर के बैठे नहीं रह जाना, बल्कि यू हैव टू सेल योर आइटम्स टू गेट द रियल प्रॉफिट। तो बच्चों को समझाना पड़ता है ना, ठीक है? उसी तरीके से नफ्स भी जो है वो बच्चे की मानिंद है, उसको समझाना पड़ता है, ठीक है, कि तुम्हारा असल प्रॉफिट ये नहीं है कि तुम्हें चार यानी PSL है, जहन्नुम में जाए क्रिकेट और जहन्नुम में जाए PSL, ठीक है, कि तुम्हें जो है ना वो PSL देख देख करके क्रिकेट, पाकिस्तानियों को पता है पता नहीं इंडिया के अंदर कोई और किस्म की लीग होती है, ISL होता होगा इंडिया के अंदर, तो क्रिकेट देख करके जो है ना वो तुम खुश होते रहो, ये तुम्हारा प्रॉफिट नहीं है, तुमने अपने वक्त को जो क्रिकेट क्रिकेट के अंदर लगाए है ना, ये थोड़ी सी देर की तुम्हें जो है वो नफसानी खुशी मिल रही है, ये खुशी नहीं है। इस वक्त को तो तुमने नेकी के काम के अंदर लगाना था, बुराई से बचाने के अंदर लगाना था, ठीक है? तो समझाना पड़ता है भाई, जिस तरह आज पूरी की पूरी कौम जो है वो इंडिया और पाकिस्तान की छोटे से बच्चे से भी ज्यादा बदतर हो गई है, छोटे बच्चे से भी ज्यादा अकलें जो है ना वो बदतर हो गई हैं इन इंडिया और पाकिस्तान के मुसलमानों की, जो कि क्रिकेट के ऊपर जो है वो अपनी जिंदगी की पूंजी जाया कर रहे हैं। तो इनको समझाना पड़ेगा कि नहीं समझाना पड़ेगा, क्या ख्याल है आपका? वो तो KFC को स्पॉन्सर कर दिया, तो इस वजह से जो है वो कुछ लोग जो है ना वो इसके खिलाफ हो गए हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। खुद लिखते हैं कि नहीं, हम आपको पता है कि हम क्रिकेट के कितने दीवाने हैं, लेकिन आपने फलस्तीनी भाइयों की फिक्र करी बिल्कुल भी नहीं करी, और KFC को जो है वो अपना स्पॉन्सर बना लिया। यानी क्रिकेट का दीवाना होना जो है ना, ये इनके रग रेशे से नहीं निकल रहा, ये इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्रिकेट की दीवानगी जो है ना ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रही है। असल मसला जो है ना वो एक PSL का मसला नहीं है, असल मसला ये है कि तुमने इंतहाई बेफायदा किस्म की चीज को और ब्रिटिश ब्रांडेड, आज क्यों बायकॉट कर रहे हैं इन सारी चीजों का, है कि उनका ताल्लुक जो है वो अमेरिका से है, उनका ताल्लुक इसराइल के साथ है। अल्लाह के बंदे, तुम्हें इतना नहीं पता कि इसराइल को बनाया किसने है? ये नहीं पता? पता है सब कुछ, अब तो ये सब कुछ खुल के सामने आ चुका है कि इसराइल को बनाया किसने है। बर्तानिया ने तो इसराइल को बनाया है, राइट? बर्तानिया, ब्रिटिश, दे आर द फाउंडर्स ऑफ इसराइल। और तुम बर्तानिया का जो बिल्कुल प्योर ब्रांडेड बर्तानवी इलीट का जो बकवास गेम है, जिसके अंदर जो है वो खड़े रहते हैं और जो है वो खाली लोगों को बेवकूफ बनाकर जो है वो पैसे कमाने का, उसके अंदर कौन सी वर्जिश होती है, कौन सा उसके अंदर जो है वो फायदेमंद खेल है, राइट? लेकिन दीवाने हुए हैं और इसके ऊपर फख्र करते हैं, इसके ऊपर फख्र करते हैं कि हम क्रिकेट के दीवाने हैं, ठीक है ना? अब तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अजाब नहीं आएगा तो फिर और क्या आएगा तुम्हारे ऊपर, राइट? बहरहाल किसी ने यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज में कुछ लिखा है, तो उसको पढ़ लेते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये सिलसिले की नेमत दी है, तो इस नेमत की कदर कैसे करें और इसका हक कैसे अदा करें कि हम इस नेमत से महरूम ना हो जाए। भाई इस नेमत की कदर करने का मतलब ये है कि इस नेमत को सही से इस्तेमाल करें जैसे इसको इस्तेमाल करना चाहिए और इसको आगे फैलाएं, ठीक है, इसको इसके बारे में लोगों को बताएं। अब कैसे के जो तफसीलात हैं वो अभी रहने दें, अभी कुछ क्लास की चीजें पढ़ लेते हैं। बहुत दफा यानी कैसे के सवाल का जवाब दिया जा चुका है, उम्मीद है कि आपने गौर से सुना हो। तो बस कदर करने का मतलब यही होता है कि खुद इस नेमत को सही तरीके से इस्तेमाल करना और आगे अल्लाह के बंदों तक पहुंचना। अच्छा क्या कहते हैं, किसी से बात की जाए तो कहते हैं कि दीन सिर्फ पाकिस्तान के लिए रह गया है, मौलवियों को बस पाकिस्तान के लिए नाचना आता है, मौलवियों को बस पाकिस्तान के लिए नाचना आता है, और भी तो मुल्क है। दीन सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही रह गया है, मौलवियों को सब पाकिस्तान के लिए नाचना आता है, तो मौलवी जो है पहली बात मौलवी नाचते हैं, ये नाचने वाले तो ये वाली बात कर रहे होते हैं, अब उन्होंने मौलवियों को कह दिया कि वो नाचते हैं, तो क्या किया जाए भाई ऐसे बंदे का, ठीक है। दीन सिर्फ, हाँ सही बात है, दीन आपके लिए को थोड़ी है, दीन तो दूसरों के लिए, दीन पाकिस्तान के लिए नहीं, दीन जो है वो दूसरे लोगों के लिए, तो फिर ठीक है, आप जब कब्र में जाइएगा तो फिर आप जो है ना वो कब्र के अंदर जब फरिश्ते आकर के आपसे सवाल पूछे ना कि भाई तुम्हारा दीन क्या है, तो कह दीजिएगा कि क्या मेरे लिए खाली है, तुम मुझसे क्यों आकर के सवाल कर रहे हो, तुम बराबर वाली कब्र में जाओ ना, राइट, तुम बराबर वाली कब्र में जाकर के सवाल क्यों नहीं करते, मुझसे क्यों आकर के सवाल कर रहे हो, मेरे लिए रह गया है खाली है सवाल जवाब। भाई ऐसे शख्स को तो इसके अलावा और क्या जवाब दिया जा सकता है, राइट। तो ऐसे लोगों से जब बहस करेंगी या ऐसे लोगों से जो है वो फजूल में इस तरह से बात करेंगी जो कि तरीका नहीं है बात करने का, तो उन्होंने ऐसे ही जवाब देना है, और उस जवाब का फिर उस जवाब का जवाब जो है वो सिर्फ यही हो सकता है कि भाई कब्र में जा करके आप दूसरों को, आप फरिश्तों को कह दिएगा, वो कहेंगे हम तो मानते ही नहीं है कि फरिश्ते आएंगे, तो फिर अब आप क्या जवाब देंगे, ठीक है। रहने देना इस तरह की फजूल बातों में, वक्त जाया नहीं किया करें, करने का काम है वो तो करते ही नहीं है, फजूल कामों की तरफ जो है ना वो हम वक्त जाया करते हैं। खैर हाल, तो नफ्स को समझाना कि पूंजी तेरी उम्र है और नफा इसका ये है कि हमेशा हमेशा की भलाई यानी आखिरत की निजात हासिल करें, अगर ये दौलत हासिल कर ली तो तिजारत में नफा हुआ, और अगर इस उम्र को यूं ही खो दिया और भलाई और निजात हासिल ना की तो इस तिजारत में बड़ा नुकसान उठाया कि पूंजी भी गई और नफा भी नसीब ना हुआ, ठीक है। यानी वक्त तो आपका गुजर रहा है ना, आपने जो है वो दिन के चंद घंटे या पूरा दिन जो क्रिकेट का मैच देखने में लगाया, तो अब ये दिन वापस तो नहीं आएगा, ठीक है ना, ये वक्त तो आपका खत्म हो गया, ये तो ऐसे ही है कि जैसे आपने जो है ना वो अपना जो कैपिटल था वो जाया कर दिया, बहा दिया है ना, जिंदगी के कैपिटल की बेहतरीन मिसाल जो है ना वो बर्फ है, बर्फ, ठीक है, जो बर्फ आपने फ्रीजर से निकाली हुई हो, फ्रीजर के अंदर तो बर्फ जो है वो पिघलती नहीं है, राइट, लेकिन बर्फ को जब आप फ्रीजर से निकाल देते हैं तो अब तो उसने पिघलना है, अब अगर उस बर्फ से आपने ठंडक हासिल कर ली तो आपने फायदा हासिल कर लिया, और अगर आपने ठंडक हासिल नहीं करी तो ऐसा तो नहीं होगा कि बर्फ जो है वो इंतजार करेगी, तो कोई बात नहीं बेटा, आज तुमने ठंडक हासिल नहीं करी तो तुम कल ठंडक हासिल कर लेना, मैं कल भी यहीं पे रहूंगी कहीं नहीं जाऊंगी, बर्फ ऐसी तो नहीं है, वो तो थोड़ी सी देर के अंदर पिघल करके पानी बन जाएगी और उसकी ठंडक खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, यही मामला जो है वो हमारी जिंदगी का भी है, जिसको ये बात समझ में आ गई तो उसने अपनी जिंदगी को कीमती बनाने की फिक्र शुरू कर दी, और जिसको ये बात समझ में नहीं आई तो अब उससे बहस करके जो है ना वो आप उसको ये बात नहीं समझा सकते, ठीक है। तो फरमाया कि ये पूंजी ऐसी कीमती है कि इसकी एक एक घड़ी बल्कि एक एक सांस बे इंतहा कीमत रखती है, और कोई खजाना कितना ही बड़ा हो इसकी बराबरी नहीं कर सकता, एक तो इसलिए कि खजाना अगर जाता रहे तो कोशिश और मेहनत से उसकी जगह दूसरा खजाना हासिल किया जा सकता है, ठीक है, यानी आपने गोल्ड कॉइन्स खरीद के रख लिए, गोल्ड बिस्किट्स खरीद के रख लिए, तो अगर आपके गोल्ड बिस्किट जो है वो किसी ने चुरा लिए, किसी ने छीन लिए, तो आप जो है वो गोल्ड बिस्किट दोबारा भी खरीद सकते हैं, ठीक है ना। तो उस और उन गोल्ड बिस्किट्स के जरिए से जो है वो आप अपनी आंखों को ठंडा कर सकते हैं, अगर आपकी आंखें गोल्ड से ठंडी होती हैं तो, ठीक है। लेकिन वक्त का जो है ना वो तो मामला ये है कि जो आज की डेट है ना, देखें ना कैलेंडर, अगर आपके सामने लैपटॉप है या फोन है तो उसके ऊपर तारीख देख लें, उसके ऊपर टाइम भी देख लें, ठीक है ना। ये अगले लम्हे ये टाइम भी चला जाएगा, ये वापस नहीं आएगा, और कल की तारीख में जो है ना ये तारीख वापस नहीं आएगी। जरा सा सोच तो, नहीं ना, आप में जितने लोग माशाल्लाह 62 लोग मौजूद हैं इस क्लास के अंदर, ठीक है ना, क्या उम्र है आपकी, ठीक है, कितनी उम्र जो है वो यानी कितनों की होगी, कोई 40 साल किसी की उम्र होगी, किसी की जो है वो 30s में होगी, किसी की जो है वो 50s में होगी। थोड़ा सा सोचें तो सही कि ये आप थोड़े दिन पहले जो थी वो 50 साल की नहीं थी, राइट। अब जो है वो 50 को क्रॉस कर चुकी है। 50 को क्रॉस करने का मतलब पता है कि जो एवरेज एज है ना इस वक्त इंसानों की दुनिया के अंदर वो 60 ईयर्स होती है। 60 ईयर्स, नबी अलैहिस्सलाम की 63 साल उम्र थी, 63 ईयर्स, वो एवरेज उम्र है इंसान की, एवरेज उम्र 63 ईयर्स। लेकिन वो जो 63 ईयर्स थी ना वो सोलर कैलेंडर के मुताबिक नहीं थी, वो लूनर कैलेंडर के मुताबिक थी, चांद के कैलेंडर के मुताबिक, ठीक है ना। उस जमाने में अरब जो है ना वो लूनर कैलेंडर इस्तेमाल करते थे, सोलर कैलेंडर इस्तेमाल नहीं करते थे, यानी चांद से तारीखें। तो चांद के हिसाब से तो 63 ईयर्स जो हैं वो तो सोलर कैलेंडर के पता नहीं 70 ईयर्स के करीब बने या लगभग, ठीक है। तो नहीं बल्कि उसके उसके और भी कम बने ना, ठीक है, क्योंकि चांद से जो है वो तो छोटा छोटा ईयर होता है। तो हमारी उम्र तो बस खत्म होने वाली है, जो 40 से आगे क्रॉस कर गया तो वो तो डाउनवर्ड स्लोप में जा रहा है ना। अगर आप एवरेज उम्र कंसिडर करते भी हैं, वरना तो उम्र के अंदर एवरेज की तो कोई कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं, क्योंकि मरने का तो कोई टाइम नहीं होता, कोई 4 मिनट में मर जाता है, कोई 4 घंटे में मर जाता है, कोई 4 दिन में मर जाता है, कोई जो है वो 4 साल में मर जाता है, कोई 40 साल में मर जाता है। तो ये तो बस एक खामखा की हमने स्टैटिस्टिक्स बनाई हुई है कि जी 40 साल जो है वो एक एवरेज एज हो जाती है, वरना हर इंसान का मौत का जो है ना वो मामला बिल्कुल ही जुदा है बाकी तमाम तमाम इंसानियत से, ठीक है। ऐसा कुछ थोड़ी है सारे इंसान जो है वो 60 में मर रहे हैं तो अब ये भी साहब जो है ना वो 60 के करीब ही जाकर के मरेंगे, नहीं, एक झटका, बस एक झटका चाहिए हमें दुनिया से आगे अगली दुनिया में चले जाने के लिए। तो यानी जरा सा आप तस्वुर करें ना तो यानी अच्छा खासा जो है ना वो आपके ऊपर हैबत तारी हो सकती है, अच्छी खासी हैबत तारी हो सकती है, ठीक है, कि कितना करीब मौत के पहुंच रहे हैं, राइट। बहरहाल इसमें तो बहुत सारी बातें, बहुत सारा कुछ कहा जा सकता है, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है कि आपको हैबत ज्यादा कर दिया जाए, बल्कि मकसद सारी इस बात का ये है कि हम एक एक लम्हे को कीमती बनाना शुरू कर दें, फजूल चीजों के अंदर, बातों के अंदर और फजूल कामों के अंदर एक लम्हा भी जाया ना करें। तो ये उम्र जितनी गुजर जाती है इसकी एक पल भी लौट कर नहीं आ सकती, ना दूसरी उम्र मिल सकती है। दूसरे ये कि इस उम्र से कितनी बड़ी दौलत कमा सकते हैं, यानी हमेशा के लिए जन्नत और अल्लाह ताला की रजा और दीदार, इतनी बड़ी दौलत किसी खजाने से कोई नहीं कमा सकता, ठीक है। यानी जो भी आपने नेक अमल करना है वो इस वक्त के अंदर ही करना है, ठीक है ना। तो वक्त से ही जो है वो बेसिकली आपने कमाई करनी है, बाकी जो आमाल हैं वो सारे के सारे वक्त पे डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। बगैर वक्त के आप आमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इतनी बड़ी दौलत किसी दूसरे खजाने से कोई नहीं कमा सकता, इस वास्ते ये पूंजी बहुत ही कीमती है, वक्त की पूंजी। और ए नफ्स, अल्लाह ताला का एहसान मान कि अभी तेरी मौत नहीं आई जिससे ये उम्र खत्म हो जाती, ठीक है। यानी जैसे कि एक एक ताजर जो है ना वो अपना सारा कैपिटल अपनी दुकान में लगा दे, ठीक है, अपना सारा कैपिटल जो है ना वो अपनी दुकान में लगा दे, सब कुछ ही अपनी दुकान में लगा दे। तो अब दुकान के अंदर उसका सब कुछ माल असबाब मौजूद है, उसी को उसने बेच करके पैसे कमाने हैं। अब कोई शख्स जो है ना वो मतलब मार्केट में आग लग जाए, ठीक है ना, मार्केट में आग लग जाए, सही है, और उस आग से जो है ना वो दुकानें जल जल करके तबाह हो रही हैं। इतने में जो है ना वो कोई फायर ब्रिगेड के जो 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 लोग हैं वो इसकी दुकान पे आकर के जो है ना वो इसकी दुकान को जलने से बचा लें, ठीक है। बाकी सारी दुकानें जल रही हैं, बराबर की दुकानें जल रही हैं, सब कुछ जल रहा है, लेकिन इसकी दुकान को वो जलने से बचा लें। तो तसव्वुर करें कि ये इसके लिए कितनी बड़ी नेमत होगी। अगर इसकी ये दुकान जल जाती तो इसने तो कोई और जगह रखी नहीं थी जहां पर कि इसका कैपिटल मौजूद हो, इसका तो सारा का सारा सरमाया उसी दुकान के अंदर था, ठीक है। तो कितनी बड़ी नेमत इसको हासिल हो गई, और कितना ये एहसानमंद रहेगा उन लोगों का जिन्होंने इसकी दुकान को जलने से बचा लिया। मौत का यही मामला है कि हमारा सारा का सारा कैपिटल जो है ना ये हमारी उम्र है ना, और अगर मौत आ जाती है तो ये कैपिटल सारा का सारा खत्म हो जाता है, ठीक है ना। बीमार होने से ये सारा का सारा खत्म नहीं होता, हाँ बहुत सारा जो वक्त जो है ना वो आपका बीमारी में जाया हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन मौत जो है ना ये तो हमेशा हमेशा के लिए इस कैपिटल को खत्म कर देती है ना, इस सरमाए को खत्म कर देती है। तो मौत से हमें किसने रोका हुआ है, किसने बचाया हुआ है, कोई इंसान नहीं बचा सकता सिवाय परवरदिगार के। परवरदिगार ही है जिसने के मौत को टाला हुआ है हमारे ऊपर से। तो अल्लाह ताला ने आज जिंदगी का एक और दिन अता फरमाया है। अगर तू मरने लगे तो दिलो जान से आरजू करे, यानी अगर तू मरने लगे तो दिलो जान से तू आरजू करे कि मुझे एक दिन की उम्र और मिल जाती, ताकि उस एक दिन में सारे गुनाहों से मैं सच्ची और पक्की तौबा कर लूं और अल्लाह ताला से पक्का वादा कर लूं कि फिर इन गुनाहों के पास नहीं फटकूंगा, और वो सारा दिन अल्लाह ताला की याद और ताबेदारी में गुजार दूं, है ना। अगर एक दिन की मोहलत मलिकुल मौत साहब खुद आकर के आकर देते हैं, बाकी किसी के कहने से क्या होता है, ठीक है। डॉक्टर साहब ने कहा कि अच्छा जी मैं आपको आज नहीं मारता, मैं आपको एक दिन के बाद मारूंगा, तो आप कहेंगे डॉक्टर साहब आप मुझे मार कैसे सकते हैं, पहले पहले तो आप मुझे ये बताएं आपके पास अथॉरिटी कहाँ से आई कि आप मुझे मार सकते हैं, ठीक है ना। कोई मलिकुल मौत वाकई आ जाए, या ये कि कोई बंदा मलिकुल मौत की शक्ल में आ जाए कि जिसके पास के फुल अथॉरिटी हो हमें मारने की, और जो कि तैयार हो कि हाँ बस मैंने तुम्हारी गर्दन काट देनी है, फिर वो एकदम से रुक जाए कि अच्छा मैं तुम्हें एक दिन की मोहलत और दे देता हूँ, कर लो जो करना है, ठीक है। तो उस एक दिन के ऊपर आप कैसे गुजारेंगी, ठीक है। जब मरने के वक्त तेरा ये हाल और ये ख्याल होता है तो अपने दिल में तू यूं ही समझ ले कि गोया मेरी मौत का वक्त करीब आया था, और मेरे मांगने से अल्लाह ताला ने ये दिन मजीद दे दिया है, और इस दिन के बाद मालूम नहीं कि कोई और दिन नसीब होगा या नहीं होगा। लिहाजा इस दिन को तो इस तरह गुजारना चाहिए कि गोया ये उम्र का आखिरी दिन है, यानी सब गुनाहों से पक्की तौबा कर ले और उस दिन में कोई छोटी या बड़ी नाफरमानी ना करे, और पूरा दिन अल्लाह ताला के ध्यान और खौफ में गुजार दे, और अल्लाह ताला का कोई हुक्म ना छोड़े, ठीक है। हर दिन को अपनी जिंदगी का आखिरी दिन समझना, ठीक है। किसी ने जो है वो एक अपने आर्टिकल के अंदर लिखा था कि किसी जमाने में किसी जगह ना एक सर्वे किया गया, लोगों को जो है ना वो एक सवाल दिया गया कि अगर आपको ये पता चल जाए कि आज का दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है तो आप क्या करेंगे, उस दिन में आप उस दिन को कैसे गुजारेंगे। तो सबने जो है ना वो मुख्तलिफ मुख्तलिफ जवाब दिए, किसी ने कहा मैं वो सारा दिन नमाज पढ़ता रहूंगा, किसी ने कहा मैं सारा दिन जो है ना वो सदका खैरात करता रहूंगा, किसी ने कहा मैं सारा दिन जो है वो तस्बीह करता रहूंगा, किसी ने कहा सारा दिन मैं दुआएं करता रहूंगा, किसी ने कहा सारा दिन मैं फलाना काम करता रहूंगा। एक जो थे ना बुजुर्ग थे अल्लाह वाले थे, उनको जब ये सवाल पूछा गया ना उन्होंने कहा कि मैं कोई तब्दीली नहीं करूंगा अपनी अपने यानी कोई मैं नया काम नहीं करूंगा, बस जैसे मेरा हर दिन गुजरता है मैं वैसे ही गुजारता रहूंगा। तो पूछने वाले ने सवाल पूछा कि आप कोई तब्दीली नहीं करेंगे ये क्यों, उन्होंने कहा भाई मैं हर दिन को अपनी जिंदगी का आखिरी दिन समझता हूँ, और मैं हर वक्त जो है वो ऐसे ही अपनी जिंदगी गुजारता हूँ कि जैसे कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, बल्कि आखिरी दिन तो क्या आखिरी घंटा है, आखिरी घंटा तो क्या आखिरी मिनट है, मेरा तो हर वक्त ऐसे ही गुजरता है, मैं तो हर वक्त इसी सोच में हूं कि पता नहीं चंद मिनटों के बाद जो है वो मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं जिंदा रहूंगा। तो मुझे अपनी जिंदगी में कोई तब्दीली करने की जरूरत नहीं है अगर मुझे पता चल जाए कि मेरी जिंदगी में सिर्फ एक दिन रह गया, ठीक है। तो ये असल में सोच होती है, असल में कामयाब इंसानों की ये सोच होती है, जिसको कहते हैं ना थक थक के वो अल्लाह को राजी करते हैं और अल्लाह को राजी कर करके वो थकते हैं, यही उनकी जिंदगी का मकसद है। तो फरमाते हैं कि जब वो सारा दिन इसी तरह गुजर जाए, फिर अगले दिन यूं ही सोचे कि शायद उम्र में से यही एक दिन बाकी है, और ए नफ्स इस धोखे में ना आना कि अल्लाह ताला माफ कर देंगे, क्योंकि अव्वल तो तुझे कैसे मालूम हुआ कि माफ ही कर देंगे और सजा ना देंगे, अगर सजा होने लगे तो उस वक्त क्या करेगा, उस वक्त कितना पछताना पड़ेगा, और अगर माफ ही कर दिया तब भी तो नेक काम करने वालों को जो इनाम और मर्तबा मिलेगा वो तुझको नसीब ना होगा, ठीक है। अगर गुनाह कर करके जो है वो बस माफी मिल गई तो यू स्टिल लॉस्ट इट ना, कि भाई जो तुम्हें सवाब कमा लेने चाहिए थे जिससे कि आखिरत में तुम्हें आखिरत की नेमतें मिलती, तो वो तो तुम्हें नसीब नहीं होगा। फिर जब तू अपनी आंख से दूसरों को नेमतें मिलता और अपना महरूम होना देखेगा तो किस कदर हसरत और अफसोस होगा। इस पर अगर दिल में यह ख्याल आए कि फिर मैं क्या करूं और किस तरह कोशिश करूं, तो ये सोच लो कि जो चीज तुझसे मरकर छूटने वाली है, यानी दुनिया और बुरी आदतें, तो उसको अभी छोड़ दे, तू उसको अभी छोड़ दे, और जिससे तुझको साबिका पड़ने वाला है और उसके बगैर तेरा गुजारा नहीं हो सकता, यानी अल्लाह ताला, और उसको राजी करने की बातें उसको अभी से इख्तियार कर ले और उसकी याद और ताबेदारी में लग जाए, ठीक है। यानी इसको पेंडिंग में मत डालो, इसको जो है ना डिले मत करो, क्योंकि डिले करने का तुम्हारे पास कोई इख्तियार है नहीं, तुम्हारी मौत जो है ना ये फैसला करेगी कि तुम कल कुछ कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते। अपने नफ्स से कहे कि ए नफ्स, तेरी मिसाल बीमार किसी है, और बीमार को परहेज करना पड़ता है, और गुनाह करना बद परहेजी है, इसलिए इससे परहेज करना जरूरी है, और ये परहेज अल्लाह ताला ने सारी उम्र के लिए बताया है। सोच तो सही कि अगर दुनिया का कोई अदना सा हकीम किसी सख्त बीमारी में तुझे ये बता दे कि फुला मजेदार चीज खाने से बीमारी बहुत बढ़ जाएगी और तू सख्त तकलीफ में मुब्तला हो जाएगा, और फुला कड़वी और बदमजा दवा रोज रोजमर्रा खाते रहोगे तो सेहतमंद रहोगे और तकलीफ कम हो जाएगी, तो यकीनी बात है कि उस हकीम के कहने से कैसी ही मजेदार चीज हो उसको सारी उम्र के लिए छोड़ देगा, और दवा कैसी ही बदमजा और नागवार हो आंख बंद करके रोजाना उसको निगल जाया करेगा। माना कि गुनाह अगरचे बजाहिर बड़े मजेदार हैं और नेक काम नफ्स को नागवार हैं, लेकिन जब अल्लाह ताला ने इन मजेदार चीजों को नुकसानदेह बनाया है और इन नागवार कामों को फायदा मंद बनाया है, फिर नुकसान और फायदा भी हमेशा हमेशा का है, जिसका नाम दोजख और जन्नत है। तो ए नफ्स, ताज्जुब और अफसोस की बात है कि जान की मोहब्बत में अदना हकीम के कहने का तू यकीन कर ले और उसका पाबंद हो जाए, और अपने ईमान की मोहब्बत में अल्लाह ताला के कहने पर दिल को ना जमाए और गुनाहों को छोड़ने की हिम्मत ना करे और नेक कामों से फिर भी जी चुराए, तो फिर तू कैसा मुसलमान है कि अल्लाह ताला के फरमान को एक छोटे से हकीम के कहने के बराबर भी नहीं समझता है, और कैसा बेअकल है कि जन्नत के हमेशा हमेशा के आराम की दुनिया के थोड़े दिनों के आराम के बराबर भी कदर नहीं करता है, और दोजख की इतनी सख्त और दायमी तकलीफ से दुनिया की थोड़े दिनों की तकलीफ के बराबर भी बचने की कोशिश नहीं करता है, ठीक है। यानी कितने ताज्जुब और अफसोस की बात है। सही है, चंद सालों पहले ऑस्ट्रेलिया में एक नौजवान रहते थे, उनका नाम था अली बनात, कुछ लोगों ने शायद उनके बारे में सुना हो या पढ़ा हो। तो वो जो बंदा था ना वो बहुत ही कम उम्र का था, आई गेस 20s या अर्ली 30s उसकी उम्र होगी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको इतनी दौलत दी थी कि वो जो है ना ऑस्ट्रेलिया में यानी एक एक बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल जिंदगी गुजार रहा था, इवन नॉन मुस्लिम्स से ज्यादा उसके पास दौलत थी। अरब था, गालिबन फलस्तीनी नौजवान था या पता नहीं, ठीक है। तो इतनी दौलत थी कि उसके पास सबसे महंगी गाड़ी होती थी, सबसे महंगे कपड़े पहनता था, और उसने जो है ना वो यानी अजीब अजीब किस्म की कलेक्शंस करके रखी हुई थी, घड़ियों की कलेक्शन एक से एक जो है वो मिलियन, हजारों डॉलर्स की घड़ियां, मिलियन डॉलर्स की जो है उसके पास, ठीक है। तो उसको जो है ना वो एक दिन डॉक्टरों ने कैंसर डायग्नोज कर दिया और उसको बता दिया कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 4 महीने रह गए हैं, 4 महीने में तुम उससे ज्यादा नहीं चल सकते, ठीक है। तो उस बंदे ने जो उसको जो है ना उस वक्त अकल आ गई कि अब मेरे पास 4 महीने रह गए, उसने अपनी जिंदगी को बिल्कुल फ्लिप कर लिया और उस उन यानी आखिरी दिनों के अंदर जो है ना वो उसने अपनी दौलत को यानी अल्लाह की रजा की खातिर न जाने कहाँ कहाँ गरीब मुल्कों में जाता था, और वहां पे जाकर के उसने यानी चैरिटी के काम करने शुरू किए, गुनाहों से तौबा करी, और जो है वो नेक लोगों के साथ उसने दोस्ती बनाई, उनके साथ जो है वो उठना बैठना शुरू कर दिया, ठीक है। तो उसका फिर एक इंटरव्यू मैंने देखा था, तो वो रोते हुए कह रहा था कि यानी इट टुक ए मैन इन अ सूट, इट टुक ए मैन इन ए सूट टू टेल मी दैट आई विल डाई, राइट। इट टुक ए मैन इन अ सूट टू टेल मी दैट आई विल डाई, क्या मतलब कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबी के जरिए से मुझे हमेशा से बता रहे थे, राइट। अल्लाह ताला का कुरान मुझे हमेशा बताता रहा कि तुमने मर जाना है, तुमने मर जाना है, लेकिन मैंने उसकी बात को तवज्जो से नहीं सुना। लेकिन एक हॉस्पिटल का डॉक्टर जो कि काफिर था और सूट बूट पहना हुआ था, जिसको कि वो अरब नौजवान यानी सुन्नत से ज्यादा अहमियत नहीं देता था अपनी जिंदगी में, लेकिन अमल नहीं करता था कुछ भी उसके मुताबिक, तो कहता है कि उस किस्म के एक काफिर इंसान जब मुझे बताया ना कि तुमने मर जाना है, तब मैंने कितना संजीदगी से इस बात को लिया और मैंने अपनी जिंदगी की पूरी तरतीब बदल दी। लेकिन अल्लाह का कुरान मुझे बता रहा था, नेक लोग मुझे बताते रहे, मैंने उनकी बात नहीं मान करके दी, तो अब उसको अफसोस हो रहा था, राइट। तो यही तो हमारी भी हकीकत है कि डॉक्टर साहब की बात, अब देख लें आप एक घराने के अंदर जो है ना वो एक डॉक्टर आ जाए, ठीक है, आपके फैमिली में कोई डॉक्टर होंगे, हो सकता है आप खुद ही कोई डॉक्टर हो, ठीक है ना। तो अगर आप खुद डॉक्टर हैं तो आपको अंदाजा होगा ना कि फैमिली वाले आपकी कितनी कदर करते हैं, कितनी आपकी बात को अहमियत देते हैं, कितना आपसे पूछ पूछ करके काम किया करते हैं, ठीक है। या जो है वो अगर कोई फैमिली के की डॉक्टर साहिबा हैं या डॉक्टर साहब हैं, कितनी उसकी वैल्यू होती है खानदान के अंदर, ठीक है। लेकिन एक जो है वो दीन का मुसलेह किसी खानदान के अंदर आ जाए, राइट, लोगों को जो है वो गुनाह, और वो डॉक्टर साहब तो फिर जो है वो यानी लोगों के पीछे पड़ने की वजह से उनको जवाब देते हैं, वो खुद तो नहीं लोगों को जो है वो समझा रहे होते हैं कि भाई आप जो है वो इस तरह बद परहेजी ना करें, आपकी सेहत खराब हो जाएगी, आप इस तरह से जो कर रही हैं उस तरह से ना करें, आप जो है वो बीमारी में मुब्तला हो जाएंगी। डॉक्टर साहब तो लिफ्ट भी नहीं करा रहे होते, उनको तो अपने क्लिनिक से जो है वो फुर्सत नहीं होती, राइट। लेकिन जो अल्लाह का नेक बंदा होता है, जिसको कि आखिरत की अपनी भी आखिरत की फिक्र होती है और दूसरे खानदान वालों की आखिरत की फिक्र होती है, वो खालिसतन उनकी खैर ख्वाही में उनको जो है वो गुनाहों से बचने के लिए समझा रहा होता है, लेकिन कदर करना तो दूर की बात, लोग थू थू करते हैं उसके ऊपर, लोग उसे पीछा छुड़ाते हैं, जैसे नबी अलैहिस्सलाम के साथ उनके खानदान वालों ने किया था, राइट। कि हमेशा हमेशा के अजाब से बचाने के लिए नबी अलैहिस्सलाम जो है वो जब मुसलह का काम करना शुरू किया तो उनको जादूगर भी कहा गया, साहिर कहा गया, उनको दीवाना कहा गया, उनको मजनून कहा गया, उनको जो है वो शायर कहा गया, और उनको कैसी कैसी जो है वो अजियतें दी गई, ठीक है ना। तो क्या हम भी ऐसे इंसानों में अपना शुमार करना चाहते हैं जो जिस्मानी डॉक्टर को तो इतनी अहमियत देता है और रूहानी डॉक्टर की जो है वो बिल्कुल भी अहमियत उसके जहन के अंदर नहीं है, ठीक है। तो फरमाते हैं कि नफ्स यूं कहो कि ऐ नफ्स, दुनिया तो सफर का मकाम है और सफर में पूरा आराम हरगिज मयस्सर नहीं हुआ करता, तरह तरह की तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, मगर मुसाफिर इसलिए इन तकलीफों को बर्दाश्त कर लेता है कि घर पहुंचकर आराम मिल जाएगा। अगर इन तकलीफों से घबरा कर किसी सराय में ठहर कर इसको अपना घर बना ले और आराम और आराइश का सारा सामान वहां जमा कर ले, तो सारी उम्र भी घर पहुंचना नसीब ना हो, है ना। वहीं रास्ते के ऊपर ही घर बना ले, वहीं पे बैठा रहे, तो फिर तो ये अपने घर नहीं पहुंच सकता। इसी तरह दुनिया में जब तक रहना है, मेहनत और मुशक्कत को बर्दाश्त करना चाहिए। इबादत में भी मेहनत है और गुनाहों के छोड़ने में भी मुशक्कत है, और भी तरह तरह की मुश्किलात हैं, लेकिन आखिरत हमारा असली घर है। वहां पहुंचकर सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। गर्ज नफ्स से ऐसी ऐसी बातें करके उसको सही रास्ते पर लगाना चाहिए और रोजमर्रा इसी तरह समझाना चाहिए। और याद रखो कि अगर आदमी खुद अपनी भलाई और दुरुस्ती की कोशिश नहीं करेगा तो और कौन उसकी खैर ख्वाही करेगा। ठीक है, अगर खुद जो है वो दवाई लेने की और जो है वो परहेज करने की इंसान ने फिक्र नहीं करी तो डॉक्टर बेहतरीन से बेहतरीन भी उसको मिल जाएगा ना, तो उसका इलाज नहीं हो सकेगा। अल्लाह ताला बात की समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दुआ अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थोड़ी सी ब्रेक के बाद इंशाल्लाह।